आज है 10 मार्च दिन गुरुवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। संसद में कांग्रेस ने कहा सरकार ने विजय माल्या को आपराधिक षड्यंत्र के तहत भगाया।
मेरा आरोप है इस सरकार पर, जब इतनी एजेंसियां उसकी इंट्रोगेशन कर रही थी उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। ये सबको मालूम है कि वो ऐसा परिंदा है, एक दिन एक डाल पे होगा, दूसरे दिन दूसरी डाल पे होगा।
एनजीटी ने कहा यमुना किनारे कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए श्री श्री रविशंकर भर सकते हैं कल तक जुर्माना। बिहार के नवादा में दलितों की झोपड़ी जलाए जाने की घटना के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज।
जातीय तनाव नहीं है और पुलिस वहां पर तफ्तीश कर रही है। अभी तक ये प्रकाश में नहीं आया कि कोई जानबूझ के आग जलाया है।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए पूछा है कि सरकार ने उद्योगपति विजय माल्या को देश से बाहर कैसे जाने दिया। संसद के बाहर संवाददाताओं से राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में अपने भाषण में इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उद्योगपति विजय माल्या पर बैंकों का करीब 9,000 करोड़ का कर्ज बकाया है। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि विजय माल्या भारत से बाहर जा चुके हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस पर निशाना उन्होंने साधा और कहा कि विजय माल्या और बोफोर्स मामले से जुड़े ओतावा कोतरौकी को के देश छोड़ने के मामले में फर्क है। बिहार में नाबालिग रेप मामले में फरार चल रहे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक राजवल्लभ यादव ने आज आत्मसमर्पण कर दिया है। पटना के जोनल महानिरीक्षक कुंदन कृष्णन ने कहा कि इनकी संपत्ति की कुर्की की गई थी। विधायक राजवल्लभ यादव इस मामले में पिछले एक महीने से फरार चल रहे थे। पटना के जोनल महानिरीक्षक कुंदन कृष्णन ने मामले के बारे में बताया।
फरवरी 9 को एक माइनर लड़की के बयान पर बलात्कार का केस दर्ज हुआ था, जिसमें तीन महिलाओं नामजद थी, तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और एक मिडिल एज आदमी का नाम अज्ञात के विरुद्ध केस हुआ था। एविडेंस आई कि ये व्यक्ति राजवल्लभ यादव जी हैं। ये घटना उन्हीं के घर पर हुई थी, नवादा जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत। जब उन पर गिरफ्तारी का आदेश दिया गया तब तक वो फरार हो गए और आज फाइनली वो कोर्ट में 15:25 पर पीछे से एक छोटी गली से आके चुपचाप कोर्ट में सरेंडर किए हैं एंड ही हैज बीन फॉरवर्डेड।
ये थे कुंदन कृष्ण के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दिल्ली में यमुना किनारे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को लेकर एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को 5 करोड़ रुपयों का जुर्माना भरने के लिए कल तक का समय दिया है। पहले एनजीटी ने आदेश दिया था कि ये पैसे आज शाम तक जमा कराए जाएं, नहीं तो यमुना तट पर वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आयोजन की इजाजत रद्द हो सकती है। दिल्ली में यमुना नदी के तट पर 11 से 13 मार्च तक ये फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई देशों से हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। जर्मनी में चरमपंथ विरोधी संस्था के अधिकारियों का कहना है कि चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़ी कुछ फाइलों का अध्ययन किया जा रहा है, जिनमें आईएस से जुड़े कई देशों के हजारों चरमपंथियों की जानकारियां मौजूद हैं। ये दस्तावेज ब्रिटेन और जर्मनी की मीडिया को मिले हैं और ये इस्लामिक स्टेट में लड़ाकों की भर्ती से जुड़े हुए मालूम होते हैं, क्योंकि इनमें लड़ाकों के नाम और निजी जानकारियां मौजूद हैं। माना जा रहा है कि ये दस्तावेज इस्लामिक स्टेट से छोड़ चुके सदस्य ने मीडिया को दिए हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। आज संसद के दोनों सदनों में उद्योगपति और राज्यसभा में सांसद विजय माल्या के भारत छोड़कर चले जाने के मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत माल्या को भाग जाने दिया। वहीं अपने बचाव में सरकार ने कहा कि माल्या हमारे लिए कोई संत नहीं है और उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों को सख्ती से जांच की जा रही है। इसके बावजूद कांग्रेस ने लोकसभा में से वॉकआउट कर दिया और राहुल गांधी ने एक बार फिर फेयर एंड लवली जुमले का इस्तेमाल कर सरकार की काला धन वापस लाने की नीति की आलोचना की। पूरी जानकारी के साथ दिव्या आर्य।
He has raised his issue, Mr. Kharge has raised his issue. The government is fully prepared and Mr. Vijay Malia is not a saint for us.
लोकसभा और राज्यसभा की शुरुआत में ही कांग्रेस नेता सरकार को विजय माल्या के मुद्दे पर घेरने को तैयार थे। वजह थी सरकार के अटॉर्नी जनरल का बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी देना कि विजय माल्या 2 मार्च को ही देश छोड़कर जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैंकों की उस अर्जी की सुनवाई हो रही थी जिसमें करोड़ों के कर्जे की उगाही की कोशिशों के बीच विजय माल्या को देश छोड़ने से रोकने का आदेश दिए जाने की अपील की गई थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा,
सर मेरा आरोप है इस सरकार पर, जब इतनी एजेंसियां उसकी इंट्रोगेशन कर रही थी, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उसका पासपोर्ट जब्त क्यों नहीं हुआ था? ये सबको मालूम है कि वो ऐसा परिंदा है कि एक दिन एक डाल पे होगा, दूसरे दिन दूसरी डाल पे होगा।
विजय माल्या पर करीब 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। ललित मोदी का उदाहरण देते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सरकार ने एहतियात बरतते हुए समय रहते माल्या के खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाया। जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा,
उस दिन कोई आदेश नहीं था उनको रोकने का किसी एजेंसी का। आपने जो जिक्र किया, मैं आपने दूसरा उदाहरण भी जिक्र किया कि ललित मोदी को कहलाने के लिए क्या किया। वो जब बाहर गए थे तो आपकी सरकार थी, आपने केवल फेमा में केस रजिस्टर किया था जिसमें ना रोक पाने की सुविधा है ना सजा दे पाने की सुविधा है। पीएमएलए में नहीं किया था, वो बाद में हुआ था।
जेटली ने बताया कि जब तक बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में माल्या का पासपोर्ट जब्त करने की अर्जी दी वो देश छोड़ चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि माल्या के खिलाफ कर्जा ना चुकाने और भुगतान ना करने के देश भर में 22 मामले दर्ज हुए हैं और इन सभी की निष्पक्ष जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बैंकों की तरफ से पैसा उस दौर में दिया गया जब यूपीए की सरकार थी। हालांकि आजाद ने कहा कि सरकार की तरफ से कोई भी पैसा नहीं दिया गया है और ये बैंकों और माल्या का निजी लेन देन रहा है। सरकार के जवाब को नाकाफी बताते हुए कांग्रेस, एनसीपी और वाम दलों ने वॉकआउट कर दिया। बाहर आकर राहुल गांधी ने कहा,
हमने सिंपल सवाल पूछा था, 9000 करोड़ रुपए जिसने चोरी किए हैं वो हिंदुस्तान से भाग के कैसे चला गया, ये सवाल था। उसका जवाब हमें पार्लियामेंट में ना मोदी जी से मिला ना जेटली जी से मिला। फेयर एंड लवली स्कीम चोरों के लिए, ब्लैक मार्केटर्स के लिए, ड्रग माफिया के लिए स्कीम बनाया गया है। जिसको भी अपना पैसा काले से सफेद करना है वो फेयर एंड लवली स्कीम के माध्यम से कर सकता है।
फेयर एंड लवली स्कीम से राहुल गांधी का इशारा एनडीए सरकार की बजट में की गई उस घोषणा की तरफ था जिसमें भारत में अघोषित संपत्ति रखने वाले लोगों को एक बार भुगतान करने का मौका दिया जा रहा है जिसके साथ उन्हें कर और जुर्माना देना होगा। विजय माल्या के देश छोड़ने पर संसद में हुई बहस में समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने माल्या के राज्यसभा सांसद होने का मुद्दा भी उठाया और इस वजह से ये मामला एथिक्स कमेटी में भेजने की मांग की। दिव्या आर, बीबीसी दिल्ली।
आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर अब दिल्ली में यमुना किनारे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए लगा जुर्माना कल तक जमा कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने की समय सीमा कल तक के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली में यमुना नदी के तट पर 11 से 13 मार्च तक वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है जिसमें कई देशों से हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। इधर ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। मैंने पूरी जानकारी के लिए बात की विनीत खरे से।
सुशीला, सबसे पहले आज जो मीडिया सूत्रों से खबरें आ रही हैं वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कल होने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके पहले आपको याद होगा जब ये विवाद शुरू हुआ था पर्यावरण को लेकर, तब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो हिस्सा लेने वाले थे उनकी तरफ से कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया था और तब ये सवाल उठ रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये कार्यक्रम वो में नहीं आएंगे, शामिल नहीं होंगे। लेकिन आज जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, जो हम पुष्टि नहीं कर पाए लेकिन जो मीडिया में खबरें चल रही हैं वो ये कि सरकार की तरफ से ये पुष्टि हो गई है कि कल नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। दूसरी खबर ये जो आज कल के कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण है वो ये कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की तरफ से आज कहा गया था कि अगर आप शाम तक 5 करोड़ का जो उन्होंने जुर्माना किया है अगर आप उसे जमा नहीं करते तो हमने जो परमिशन दी है हम उसको रिवोक कर देंगे। आपको याद होगा 2 दिन ये बहस चली थी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में और कल उन्होंने जुर्माना लगाया था श्री श्री रविशंकर की आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन पर 5 करोड़ का। इसके अलावा उन्होंने डीडीए पर जुर्माना लगाया था और जो दिल्ली की जो पर्यावरण संस्था है उस पर उन्होंने जुर्माना लगाया था। तो श्री रविशंकर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये वो जुर्माना नहीं देंगे, वो क्यों जुर्माना दे। आज उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत करके बातचीत में भी यही कहा है, लेकिन अब एक दिन बढ़ा दिया है समय। आज जो का जो समय था वो कल तक का समय दिया है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, जो सशर्त उन्होंने कहा था कि भाई हम आपको अनुमति दे रहे हैं उसमें 5 करोड़ का था। अब हमें देखना होगा कि कल क्या जुर्माना देती है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, और अगर नहीं देती है तब क्या कदम उठाती है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। हम आपको बता दें, मैं गया हूं वहां पर जहां पर ये कार्यक्रम होने वाला है, मतलब कई 100 एकड़ में फैला हुआ है पूरा, और 7 एकड़ के बड़ा स्टेज है जिसमें 35 से 37 हजार कलाकार जो दुनिया भर से आए हैं वो हिस्सा लेंगे। नितिन देसाई जो बॉलीवुड का बड़ा नाम है उन्होंने ये पूरा सेट डिजाइन किया है, लेकिन अभी भी सुरक्षा को लेकर चिंता है। जिस स्टेज पर प्रधानमंत्री बैठेंगे वो उसे लेकर चिंता है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है लेकिन चिंताएं भी बहुत है।
ये थे विनीत खरे। दिल्ली से निकलकर चलते हैं बिहार। राज्य के नवादा जिले के कंझिया गांव में मंगलवार को दलितों के लगभग 70 झोपड़ियों में लगी आग की घटना पर अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि इस घटना में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। इस बीच आज जिलाधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया। स्थानीय पत्रकार नीरज सहाय कंझिया गांव पहुंचे, मैंने इस घटना पर उनसे ब्यौरा मांगा।
सुशीला, ऐसा है कि मैं यहाँ नवादा, जो कि नवादा मुख्यालय से कुछ हटकर थोड़ा अंदर इलाके में ये कंझिया गांव है, ये गांव मिश्रित आबादी वाला है। यहाँ पर अगड़ी जाति के भी लोग हैं, अकलियत के भी लोग हैं, दलित भी हैं, सारे लोग हैं। गांव में दलितों की संख्या लगभग 100 घरों की है, और इन लोगों ने गाँव के बाहर एक गैर मजरुआ जमीन है जो कि सरकारी जमीन है, उस पर इन लोगों ने अस्थाई झोपड़ी बना रखा था, जिसमें कि 8 तारीख को शाम 6-6:30 के बीच में आग लग गई। गांव में मैंने घूमा, कुछ लोगों से बात भी किया, अमूमन हर एक जाति के लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, सबका पक्ष लेना चाहा। उसमें मैंने सबसे पहले जो पीड़ित थे उन लोगों से बात किया, वो घटनास्थल पर ही थे। वहां पर मैं देख रहा था कि अस्थाई झोपड़ी जैसी ही थी जो जिसमें की आग लगी हुई थी, और ये लोग इन लोगों का जो घर है वो गाँव के अंदर है, और इन लोगों का कहना था कि चूंकि जो घर इन लोगों के पास है उसमें ये लोग सारे लोगों को एकोमोडेट नहीं कर पाते, इसलिए इन लोगों ने सरकारी जमीन पर अस्थाई झोपड़ी बनाया था जिसमें कि ये लोग केवल रात में सोने आया करते थे। लेकिन 8 तारीख की रात को शाम 6:30 के बीच में जब ये लोग खाना खाने गए थे तब कुछ अज्ञात लोगों ने यहाँ आग लगा दिया।
जी, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इन लोगों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराई है, क्या कहा गया है शिकायत में?
शिकायत में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज है, और इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को हटाने के लिए, साजिश के तहत इन लोगों को हटाने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। ये साजिश इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये इन लोगों का कहना, इन लोगों का इशारा ये है कि गांव के कुछ दबंग और कुछ अगड़ी जाति के लोग और कुछ अकलियत के लोग, उन लोगों को ये लोग कह रहे हैं कि वो लोग इन्हें हटाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तजिया का पहलाम जो होता है वो यही होता है। हालांकि मैं अकलियत समाज के मोहम्मद मुश्ताक खान से मैंने बात किया तो वो मेरे सवाल पर पहले तो वो हंस पड़े, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए गांव में पूरी शांति है और वो जो तजिया का पहलाम जो होता है वो वहीं पर होता है, और वहां पर करीब उस दौरान करीब 5 से 6 हजार लोग जुटते हैं, और ये बहुत पहले से होता आ रहा है और वो लोग इसे आगे भी जारी करेंगे। और जब मैंने उनसे ये जानना चाहा कि ऐसा दूसरे पक्ष का कहना है तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शाम के वक्त गांव में कोई इस तरह की घटना हो और गांव वाले को पता ना चले ऐसा हो नहीं सकता, उन्होंने उल्टे ही उन्हीं लोग को जिम्मेवार बताया।
ये थे कंझिया गांव से नीरज सहाय। उधर बीबीसी से बातचीत में पटना के जोनल महानिरीक्षक कुंदन कृष्णन का कहना था कि इलाके में स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मैंने उनसे इस घटना के बारे में बात की।
जो घटनास्थल का मुआयना किया गया, ये रजौली अनुमंडल की घटना है, मुआयना के बाद और लोगों से मिलने के उपरांत मालूम होता है कि ये डिलीबरेट नहीं मालूम हो रही है अभी तक, और लोग केस करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये पूरी जमीन थी सरकारी, जिसमें स्थानीय कुछ लोग जिसमें ज्यादातर दलित संवर्ग के थे, उन्होंने घेरा था कुछ कुछ इलाका कि बाद में सरकार से अपील करेंगे कि हमको अलॉट कर दिया जाए। इन झोपड़ियां जो लगाई गई थी, हमारे लोकल भाषा में प्लानी बोला जाता है, उसमें से कोई निवास नहीं कर रहे थे। घटना के समय सब लोग गए हुए थे एक कार्यक्रम, गांव के कार्यक्रम में, इसी समय ये घटना घटी। कहीं आग लगी जो फैल गई, क्योंकि यहाँ भी काफी गर्मी और हवा, जो SP हैं वो खुद गए हैं, तब भी लोग नहीं तैयार हुए हैं कोई केस करने के लिए। वो लोग लिख के यही दे रहे हैं कि ये एक राजवंशी हैं, उनके घर से आग शुरू हुई, वही फैल गई और ये किसी के द्वारा जानबूझ के नहीं किया गया।
एक दिन पहले ही ये घटना हुई है, तो क्या पुलिस को ये अंदाजा लग पा रहा है कि वहाँ पर कहीं डरे तो लोग नहीं हुए, क्योंकि ये सरकारी जमीन थी?
नहीं, डरे हुए नहीं है। सरकारी जमीन की पॉलिसी भी रही है कि सरकारी जमीन भूमिहीन को बांटा जाता है, और इसके लिए बराबर CO के यहाँ और SDO के यहाँ लोग आवेदन देते रहते हैं, परंतु यहाँ पर हैबिटेशन ये नहीं थी। पहला कोई इन घरों में रहता नहीं, ये लोग अपना टोले के लोग घेरे थे जमीन, छोटे छोटे झोपड़ियां लगाए थे कि आगे इस पर इसी आधार पर हम लोग मांगेंगे कि हम लोग को ये जमीन आवंटित कर दिया जाए, और भयभीत होने की बात कहीं नहीं आई है सामने
जी। और आप ये कह रहे हैं कि इन झोपड़ियों में लोग रहते नहीं थे, और जब वो लोग सब बाहर गए हुए थे तभी ये आग लगी है, तो कहीं पुलिस को कोई शक की सुई घूमती हुई नजर आ रही है?
पुलिस तो अभी भी तफ्तीश कर रही है, यहाँ तक ये है स्थिति कि कोई केस नहीं कर रहे हैं। अब लिखित दिए हैं जो थानेदार को, बोला कि कुछ तो लिख के देंगे, इतनी संपत्ति जली है ताकि आप लोग को मुआवजा दिया जाए, तो लिख के दिए हैं कि ये एक्सीडेंटल फायर हुआ है। एक सज्जन का नाम बताए हैं, सब मिस्टर राजवंशी जी के, उन्हीं के घर से, उन्हीं के प्लानी से ये आग शुरू हुई और फैल गई। वहाँ पर कोई जातीय तनाव नहीं है, और पुलिस वहाँ पर तफ्तीश कर रही है। अभी तक ये प्रकाश में नहीं आया कि कोई जानबूझ के आग जलाया है, फिर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। SP खुद घटनास्थल गए हैं। अगर ये प्रकाश में आएगी कि कोई असामाजिक तत्व द्वारा हरकत की गई है, तो उनको जरूर गिरफ्तार की गई है, परंतु ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं सामने आया।
ये थे पटना के जोनल महानिरीक्षक कुंदन कृष्णन।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
आप सुन रहे हैं दिन भर सुशीला सिंह के साथ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या MNS के प्रमुख राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को गैर मराठियों के नए ऑटो जलाने को कहा है। उनके इस बयान के आने के बाद से ही राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। पूरा ब्यौरा सुना रहे हैं मुंबई से आयुष देशपांडे।
राजनीतिक दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने एक समारोह के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को गैर मराठियों के नए ऑटो जलाने को कहा है।
नवीन रिक्षा, नवीन परवाने मिळालेल्या रिक्षा, नवीन नंबर प्लेट असलेल्या रिक्षा,
नए रिक्षा, नए नंबर प्लेट लगे रिक्षा अगर रास्ते पर दिखाई दे तो पहले पैसेंजर को बाहर निकालना, फिर ड्राइवर को और उस रिक्षा को जला देना।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा सितंबर 2015 में दिए आदेश के अनुसार नए ऑटो चालकों को परमिट लेने के लिए मराठी भाषा आना जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार ने 70,000 नए ऑटो रिक्शा परमिट देने का फैसला किया है, और राज ठाकरे के अनुसार इनमें से 70% परमिट गैर मराठी चालकों को दिया जाएगा, जिसकी निंदा करते हुए उन्होंने अपनी पार्टी के 10वीं स्थापना दिवस पर यह बात कही। राज ठाकरे के इस बयान के बाद चारों तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने BBC से बात करते हुए कहा,
निश्चित तौर पर ये बेहद आपत्तिजनक बयान है। मुंबई के मराठी नौजवानों को रोजगार मिले, ऑटो चलाने का परमिट मिले, इसके खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन जब महाराष्ट्र सरकार एक अपने परमिट का निवेदन देने के लिए ओपन करती है पूरा कामकाज, तो उसमें सभी लोग अप्रोच करते हैं। जिसके पास पेपर होंगे, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जिसके पास पैच होगा, उसको मिलेगा। जिसको नहीं मिला उसको फिर आगे प्रयास करना चाहिए। लेकिन राज ठाकरे का ये कहना कि जिन लोगों को परमिट मिला है उनको आप उतारिए और पूरे ऑटो को जलाइए, ये सरासर आपत्तिजनक है। कानून को सीधे चैलेंज करने वाली बात है, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बात है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस स्वयं गृह मंत्री हैं। आज 24 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी तक इस व्यक्ति के खिलाफ FIR क्यों नहीं हुआ है?
हालांकि राज ठाकरे ऐसे बयान अक्सर देते आए हैं, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ पार्टी BJP इसे महज एक पब्लिसिटी स्टंट करार दे रही है और शिकायत दर्ज होने पर कार्यवाही करने का आश्वासन जताती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माधव भंडारी कहते हैं,
ये जो बयान दिया है वो सरासर गलत है और ऐसी बेतुकी बेबुनियाद बयानबाजी करने से मीडिया में उनको एक जगह मिलती है और वो केवल मीडिया स्पेस के लिए ये बयानबाजी करते हैं और उनका जो ट्रैप है वो मीडिया उनको ये करता है, एंटरटेन करता है।
इतनी आलोचना और निंदा के बावजूद भी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना अपने दिए बयान पर अडिग है और अपना आक्रोश राज्य सरकार पर डालती है। एमएनएस की प्रवक्ता शालिनी ठाकरे कहती हैं,
जो भूमि पुत्र है उनको न्याय मिलना चाहिए, ये तो सब जगह सब राज्यों में कायदा है, वो कब दूसरे राज्य इस कायदे का पालन कर सकते हैं, तो हमारा महाराष्ट्र राज्य को क्या तकलीफ है पालन करने के लिए।
राज ठाकरे के इस बयान के बाद मुंबई के ऑटो चालकों में खासा नाराजगी है। उनका मानना है कि ऑटो चलाने के लिए गाड़ी चलाने के नियम आना जरूरी है, लेकिन मराठी भाषा आने की क्या जरूरत है।
मेरा नाम मनोज चौधरी है, लाइसेंस बच रहना चाहिए, उसके पास आधार कार्ड रहना चाहिए, परमिट मिलना चाहिए। हाँ सर, 15 साल से सर ऑटो चला रहे हो, कोई तकलीफ आज तक कोई मराठी में कोई तकलीफ नहीं आया, लेकिन ये पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। जब भाषा दिया मराठी में आएगा तो उसी को पास करेगा तो 90% आदमी फेल हो जाएगा।
राजेंद्र प्रसाद, यही विचार है कि नहीं भगाया जाए, अच्छे तरीके से कमा खा रहे हैं और ये लोग नहीं रहेंगे ना तो ये मुंबई नहीं चलेगी, क्योंकि हर एक ड्राइवर, हर एक वॉचमैन, हर एक घर में काम करने वाला नौकड़ और भाजी वाले तरकारी वाले जो भी है यूपी बिहार वाले ही हैं सब, अगर इन लोग को खाली गएगा मुंबई नहीं चलेगी।
जानकारों की माने तो राज ठाकरे इस तरह के बयान अगले वर्ष होने वाले महानगर चुनावों को मद्देनजर रखते दे रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे उनसे इस तरह के और भी बयान आने की उम्मीदें हैं। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र सरकार इसके खिलाफ क्या कदम उठाती है। आयुष देशपांडे, BBC मुंबई।
और अब समय है आपकी चिट्ठियों का,
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का।
और मैं हूँ स्वाति बख्शी।
स्वाति जी, आपके हाथों में बहुत सारी चिट्ठियां हैं।
हाँ।
कहाँ से शुरुआत करना चाहती
हैं? मैं पोस्ट कार्ड सबसे पहले पढ़ देना चाहती हूँ। ये चिट्ठी हमें भेजी है बद्री प्रसाद वर्मा, अनजान ने, अक्सर चिट्ठी लिखते हैं हमें, लेकिन इस बार इन्होंने पूछा है मुझसे और आपसे कि क्या आप श्रोताओं को बहुत धनवान समझते हैं, आप कहते हैं कि बीबीसी की वेबसाइट पर आइए, मैं जानना चाहता हूं कि अगर हमारे पास कंप्यूटर या स्मार्टफोन नहीं है तो क्या आप देंगे।
भाई बद्री प्रसाद वर्मा, अनजान साहब, आप मुझे मालूम है कि स्वर्गीय मीनू रेडियो श्रोता संघ की ओर से चिट्ठी लिखते हैं, और ये मैं आपके पोस्ट कार्ड की तरफ देख के नहीं, बिल्कुल अपनी याददाश्त से कह रहा हूँ। आपकी जो शिकायत है, हमारा मकसद ये कतई नहीं है कि आपसे कहें कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तब भी उसी पर आके आप सुने पढ़ें। हमारा मकसद ये होता है कि जिस किसी के पास ये सुविधा उपलब्ध हो और उसमें सुन सकें तो सुनिए। बाकी हमारा आपका साथ रेडियो पर तो है ही है, तो नाराज़ क्यों होते हैं वर्मा साहब।
दो पोस्टकार्ड्स और हैं, श्री गोविंद स्वर्णकार का पुरानी नमनाई जालौन उत्तर प्रदेश से, और एक और चिट्ठी है बीके सिंह की, इन्होंने लिखा ही नहीं है कि कहां से लिखी है, लेकिन इन दोनों चिट्ठियों में यही कहा गया है कि कार्यक्रम तकनीकी रूप से सुनने में इनको बहुत दिक्कत होती है। और साथ ही बीके सिंह ने जिक्र किया है जो फर्जी डिग्रियां कॉलेजेस में दी जाती हैं उसके ऊपर शायद ही कहना चाहते हैं अगर हम
कोई कार्यक्रम करें। जी, हमारी कोशिश रहेगी अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम हम आने वाले दिनों में कर पाएं, शिक्षा के स्तर पर या कहें कि गिरते हुए स्तर पर, हम जरूर कोशिश करेंगे। जहां तक बात रेडियो कार्यक्रम स्पष्ट सुन न पाने की शिकायत आपकी है, हम पहले से कहते रहे हैं, बहुत सारे श्रोताओं की शिकायत है कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, हमारे पॉडकास्ट अगर शुरू हो जाएंगे तो आप उनको इंटरनेट पे अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम जगहों से ये शिकायत आती है, लेकिन मैं समझ ये नहीं पा रहा हूँ कि कौन सी ऐसे इलाके हैं जहाँ साफ सुनाई देते हैं और कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ सुनने में दिक्कत आती है। अगर हमें ये पता चल जाए तो उसको उसी हिसाब से हम दुरुस्त कर सकेंगे।
ये एक और चिट्ठी अजय प्रकाश शर्मा की है, इन्होंने लिखा है कि वात्सल्य राय की जो रिपोर्ट थी जो उन्होंने बस्तर के DG कल्लूरी के साथ बातचीत करने की कोशिश की और जिस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ,
आलोक पुतुल गए थे, उनको लौटना पड़ा था। जी हाँ,
कौन उसी से संबंधित
लिखा
कि नहीं? ये लिखा है अजय प्रकाश शर्मा ने, लाडपुर हाथरस उत्तर प्रदेश
से। जी, क्या लिखते हैं?
और ये कहते हैं कि इस तरह की जो बातचीत है वो अशोभनीय और शर्मनाक है, ऐसे ही लोगों के कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इस तरह का व्यवहार आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाने वालों के साथ उचित है।
रिपोर्टर के साथ नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वो रिपोर्ट सुनी होगी। हमने अपनी तरफ से सिर्फ पत्रकारिता की है, जो भी तथ्य थे उनको जस का तस आपके सामने रख दिया।
ईमेल्स में जंग बहादुर सिंह और जीशान नैयर हमें हमेशा ईमेल्स लिखते हैं, उन दोनों की ईमेल्स हैं जो दुनिया जहां की तारीफ कर रहे हैं। संदीप सोनी ने ये कार्यक्रम बनाया था, प्रस्तुत किया था, ईरान चुनाव एवं सुधारवादियों की जीत पर, और मुचकुंद दुबे से भी उन्होंने बातचीत की, ये इन्हें पसंद आया है। कहते हैं कि दुनिया जहां एक ऐसा प्रोग्राम है जो हम श्रोताओं को पूरी दुनिया से जोड़ देता है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, जंग बहादुर सिंह जी और जीशान नैयर साहब, आप हमें लगातार लिखते रहें और हमें आईना भी दिखाते रहें। जी,
गांधी सुभाष का ईमेल है और ये कहते हैं कि जेएनयू प्रकरण
आपने में नाम क्या बताया,
गांधी सुभाष,
अच्छा इनका नाम गांधी सुभाष नाम है। जी जी,
सिरसा हरियाणा से इन्होंने लिखा है ईमेल, कहते हैं कि जेएनयू प्रकरण में कन्हैया की रिहाई पर कोर्ट ने जो कुछ कहा वो मैंने बीबीसी के फेसबुक पेज पर पढ़ा। निसंदेह कोर्ट ने इस मुद्दे पर बीबीसी हिंदी द्वारा प्रायोजित तथा कथित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुंह पर करारा तमाचा दिया है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदत्त एक अधिकार है, उसको न तो बीबीसी प्रायोजित करती है और न ही कोई राजनीतिक पार्टी।
इनका कहना है कि उम्मीद है कि बीबीसी को अपनी निजी राय का मंच समझने वाले बुद्धिजीवी पत्रकार इससे सबक लेंगे, रिहान फजल को इससे बाहर रखा है इन्होंने।
अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गांधी सुभाष साहब, आपकी चिट्ठी शामिल हो गई है और आपकी राय सिरमात है।
एहसान असगर मलकापुर बुलढाणा महाराष्ट्र से लिखते हैं, कहते हैं कि 7 मार्च वाले नमस्कार भारत में बहुत ज्यादा समय क्रिकेट को दे दिया, इसकी शिकायत कर रहे हैं। इन्हें प्रकाश झा से बातचीत अच्छी लगी है, लेकिन कहते हैं कि जो एक सवाल पूछा गया था कि निर्देशक खुद को डायरेक्ट करते वक्त कैसा महसूस करता है, उसका उत्तर इन्हें अभी तक मिला नहीं है।
ये आप पर आ गई है बात, अगली बार किसी निर्देशक से इंटरव्यू करें तो दोबारा ये सवाल पूछें और हो सकता है कि आप ध्यान रखेंगे।
और ये आखिरी चिट्ठी मैं पढ़ रही हूँ, डॉक्टर लोकेंद्र सिंह गुर्जर ने लिखी है रघुवंश नगर दतिया बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से, इन्होंने सलाम भेजा है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, और ये खास तौर से रिहान फजल जी को ही मेरे ख्याल से संबोधित है चिट्ठी। इन्होंने एक शेर भी लिखा है, 55 बरस दर गुजर हुए बीबीसी के साथ, अब लगे है कह दूं तलाक तलाक तलाक,
अरे बाप रे।
ये तोहमत आपके सर जाए रिहान फजल, न शेर न कता न रुबाई न रह गई गजल,
न रह गई गजल। अरे साहब, रिहान फजल को यहाँ होना चाहिए था, इस चिट्ठी का जवाब तो साहब वही देंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार अगर इस चिट्ठी का जवाब वो दे सकें, क्योंकि आपने रिहान फजल के नाम ये चिट्ठी लिखी है, तो जवाब भी शायद वो ही दे तो बेहतर होगा। और अब हमारा समय समाप्त हो रहा है, तो चलते चलते अपने श्रोताओं को मैं पता बता देता हूँ, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। अगर आप ईमेल भेजना चाहें तो नोट कीजिएगा, पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार, आपकी चिट्ठियां लेकर आए थे राजेश जोशी और स्वाति बख्शी। और अब समय है खेल समाचारों का। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अभ्यास मैच चल रहा है, उसकी लाइव जानकारी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में रजत चांदना। रजत
जी, सुशीला, आईसीसी वर्ल्ड T20 के अभ्यास मैच में भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 ओवर में 11 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा और शिखर धवन क्रीज पर जमे हुए हैं। ये अभ्यास मैच में नजदीक सबसे ज्यादा तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पे होगी, जो घुटने के ऑपरेशन के बाद वापसी की कोशिश कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ आज के मैच में उनको मौका दिया जाएगा अपनी फिटनेस को साबित करने का। वहीं जिम्बाब्वे ने T20 विश्व कप के पहले राउंड में दूसरी जीत दर्ज करते हुए सुपर 10 की और एक और कदम बढ़ा लिया है, लेकिन जिम्बाब्वे ने स्कॉटलैंड को 11 रन से मात दी, जिससे स्कॉटलैंड का वर्ल्ड T20 का सफर आज ही खत्म हो गया। 148 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्कॉटलैंड की टीम 19.4 ओवर के बीच में ही 136 रन पर ढेर हो गई। उधर ईरानी ट्रॉफी में शेष भारत ने 480 रनों के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करके मुंबई को 4 विकेट से मात दे दी और ईरानी कप को अपने नाम किया। और बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने पहले राउंड में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत दर्ज की है।
बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए रजत चांदना आपका। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए पूछा है कि सरकार ने उद्योगपति विजय माल्या को देश से बाहर कैसे जाने दिया। उद्योगपति विजय माल्या पर बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि विजय माल्या भारत से बाहर जा चुके हैं। बिहार में नाबालिग रेप मामले में फरार चल रहे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक राजबल्लभ यादव ने आज आत्मसमर्पण कर दिया है। दिल्ली में यमुना किनारे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को लेकर एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को 5 करोड़ रुपयों का जुर्माना भरने के लिए कल तक का समय दिया है। जर्मनी में चरमपंथ विरोधी संस्था के अधिकारियों का कहना है कि चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़ी कुछ फाइलों का अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें आईएस से जुड़े कई देशों के हजारों चरमपंथियों की जानकारियां मौजूद हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।